ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक फूल अक्सर बाग सजा देता है, एक सितारा आसमान चमका देता है। जहां दुनिया भर के रिश्ते काम न आए, वहां एक ईश्वर का सच्चा रिश्ता ही काम आता है और साथ देता है। सच्चा रिश्ता बारिश की तरह नहीं होता जो आए और चला जाए, बल्कि हवा की तरह होता है जो दिखता नहीं परंतु हमेशा महसूस होता है। आप सब जब नींद करते हैं तो ये दो आंखें बंद होती हैं, फिर भी स्वप्न देखते हैं, तो कौन सी आंख से देखते हैं? ये दो आंखें तो बंद है, कौन सी आंख है? मन की आंख कहे, तीसरी आंख कहे, आज उसी आंख से आपको दर्शन कराएंगी। परम ज्योति, परम पिता परमात्मा का आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं इस राजयोग मेडिटेशन के तीसरे सत्र में।
ओम शांति। बहुत धन्यवाद चंदा बहन जी। राजयोग शिविर का आज प्रातःकालीन तीसरा सत्र है, जिसमें राजयोग का मूल आधार पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय देखेंगे। जिस तरह कल आप सभी ने आत्मा की यथार्थता, आत्मा की वास्तविकता के बारे में जाना समझा, इसी तरह पिता परमात्मा कौन है? बहुत सुंदर हम सभी ने ये गीत सुना, के खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। कितने सारे सवाल थे और शायद आज हर मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति ये सारे सवाल है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर भी परमात्मा की वास्तविकता क्या है। परंतु जितना ही उन्हें समझने का प्रयत्न करे उतना ही आज का मनुष्य उलझता जाता है, और इसीलिए इतने सारे मत मतांतर हो गए कि सत्य क्या है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण का बेटा बीमार हुआ, डॉक्टर के पास लेकर के गया तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्या भगवान बचाए, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था, उसने श्री कृष्ण की पूजा आरंभ कर दी। दो दिन तक लगातार श्री कृष्ण की पूजा करता रहा। वहां एक पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे ऐसे समय में श्री कृष्ण को थोड़ी याद करते हैं। या फिर अरे माँ का हृदय करुणा वाला होता है, तू अम्बे माँ की पूजा कर, देख तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उसको भी लगा हाँ बात तो सही है, उसने माँ की भक्ति आरंभ कर दी। दिन रात हे माँ मेरे बच्चे को बचा ले पुकारता रहा। उतने में एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे तू माँ को पुकार रहा है लेकिन ऐसे समय पर माँ को थोड़ी पुकारना होता है। फिर का विघ्नहर्ता तो गणेश जी है ना, तो गणेश जी को याद कर, देखिए विघ्न टल जाएगा। उसको भी लगा हाँ बात तो सही है, उसने गणेश जी की भक्ति आरंभ कर दी। 2 दिन तक लगातार गणेश जी की भक्ति करता रहा। वहां एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा, अरे गायत्री मंत्र कर, देख चमत्कार होगा। उसको भी लगा हाँ सुना तो है, चलो गायत्री मंत्र कर लेते हैं। उसने गायत्री मंत्र आरंभ कर दिया। 2 दिन तक लगातार गायत्री मंत्र करता रहा। वहां एक और मित्र संबंधी आकर कहने लगा, अरे संकट मोचन तो हनुमान जी है, तू हनुमान चालीसा कर, देखिए संकट टल जाएगा। उसको भी लगा हाँ बात तो सही है, उसने हनुमान चालीसा करना आरंभ कर दिया। वहां एक पड़ोसी आकर कहने लगा कि अरे पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए हैं, ऐसी भभूति देते हैं जो असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती है, चलो बच्चे को लेकर जाते हैं। बच्चे को लेकर गए, भभूति खिलाई, वापस आए, 2 दिन के बाद बच्चा मर गया। कारण क्या हुआ? इतने सारे भगवानों को याद किया, फिर भी किसी ने बचाया क्यों नहीं, क्या कहेंगे? हाँ, विश्वास ही नहीं था। जिसने जो कहा उसी अनुसार करना आरंभ कर दिया, क्या इसको विश्वास कहेंगे? क्या यही विश्वास है? और कहीं हमारा विश्वास भी ऐसा तो नहीं है? आज मंदिरों में इसीलिए सारे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी होती है, सबके आगे दिया बत्ती अगरबत्ती जाकर के हाथ जोड़कर नमन करते हैं कि भाई आप में से जो सही हो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। क्या यही विश्वास है? अगर ऐसा विश्वास रहा तो प्राप्ति क्या होगी, अनुभूति क्या होगी? इसीलिए आज ईश्वर को याद करने के बाद भी जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं है। घर में छोटा सा मंदिर में भी सारे फोटो रखे होते हैं, क्या यही विश्वास है? और अगर ऐसा ही विश्वास रहा तो ईश्वर के समीप जाना, उनका सानिध्य अनुभव करना बहुत दूर की बात है। तो आखिर भी सत्य क्या है, किसको सत्य कहे? एक बार हमने एक कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम होती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथे कॉलम में लिखा था कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापी है, पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं सब परमात्मा के रूप है, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान है तो कैन यू प्रूव इट? सबूत है? अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम पढ़ने के बाद उसने क्या निर्णय लिया होगा, सत्य किसको कहा जाए? किसको कहेंगे सत्य? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है? क्योंकि सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है। क्या नेचर को परमात्मा कहे या आत्मा को कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे साकार को कहे या है ही नहीं कहे, क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? सत्य क्या है? क्योंकि सत्य तो एक होना चाहिए। 10 बातें हमारे सामने हो और हम कहे सभी सत्य है, ये कैसे हो सकता है? वो कहानी याद आती है कि एक बार 5 सूरदास थे। उन्हें कहा गया कि हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंभे जैसा है, पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, पूछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, सुंड आई तो कहा सांप जैसा है, और कान आए तो कहा सूप जैसा है, पंखे जैसा है। आखिर सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? सत्य क्या है? सत्य सभी सत्य है, देख नहीं पा रहे थे, वही तो मैं कह रही हूं कि देख नहीं पा रहे थे तो सत्य क्या है? ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है? कुछ और है। यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा आगे ले जाती हूं कि ईश्वर के बारे में इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ। मान लो कि ये 5 सूरदासों को कहा जाए कि एक 6 सूरदास दूर बैठा है, आपने जो समझा वो उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, और वो 6 सूरदास के पास, और 6 सूरदास को पहला नंबर जाकर कहता है कि देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंभे जैसा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा जाकर कहता है कि देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। थोड़ी देर के बाद तीसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। चौथा जाकर कहता है कि देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम लचीला सांप जैसा है। और पांचवा जाकर कहता है कि देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा, पंखे जैसा है। अब 5 की बातें सुनने के बाद 6 सूरदास, जिसने महसूस भी नहीं किया, वो क्या समझेगा कि ये हाथी कैसा प्राणी है? हर कोई आता है, अलग बात बताता है, आखिर ये प्राणी है कैसा? लेकिन फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि होगा कोई ऐसा प्राणी, 5 ने तो महसूस किया है ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, विश्वास कर लेता है। अब ये 6 सूरदास को कहा जाता है कि एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है। आपने जो समझा वो उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा प्राणी है। अब ये छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है कि देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन पांच ने जो महसूस किया, उन्होंने जो मुझे बताया, वो मैं तुझे बताता हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो लंबा लंबा खंभे जैसा हो जाता, कभी तो वो सीधा सीधा दीवार जैसा हो जाता, कभी तो वो गोल गोल रस्सी जैसा हो जाता, कभी तो एकदम लचीला सांप जैसा हो जाता, और कभी तो वो पंखे जैसा हो जाता। अब सातवां सूरदास, जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा हाई था, ये सुनने के बाद क्या कहेगा, क्या कहेगा? हाथी के पास देखने जाएगा, वो खुद महसूस करने जाएगा, लेकिन अगर नहीं जा सका तो क्या समझेगा, क्या कहेगा छठे सूरदास को, क्या कहेगा? सबको इकट्ठा कर देगा और हाथी बन जाएगा, खंबे को, दीवार को, रस्सी को इकट्ठा कर दो, हाथी बन जाएगा। सातवां सूरदास ये सुनने के बाद यही कहता है कि बकवास बंद कर, ऐसा कोई प्राणी होता है? अरे कोई प्राणी रंग बदल सकता है, ये समझ सकते हैं? पूरा स्केलेटन ही बदल दे, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? तो छठा सूरदास क्या कहता है, पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। मैं तो मानता हूं कि हो सकता है ऐसा। सातवां सूरदास क्या कहता है, आई डोंट बिलीव दिस, मैं इस बात को नहीं मानता, और अगर तुम मानते हो तो कैन यू प्रूव इट? कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं हुई ईश्वर के विषय को लेकर के? हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की, तपस्या की शक्ति से ईश्वर के कोई गुणों को महसूस किया और उन्होंने ईश्वर के बारे में सुनाया। किसी ने प्रेम के गुण को महसूस किया तो कहा प्रेम ईश्वर है, किसी ने सत्य की क्वालिटी को महसूस किया तो कहा सत्य ईश्वर है, किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया तो कहा प्रकृति परमेश्वर है, किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया तो कहा कण कण में ईश्वर है, किसी ने निराकार से कुछ महसूस किया तो कहा यही परमात्मा है, किसी ने कोई साकार मूर्ति द्वारा कुछ महसूस किया कहा यही परमात्मा है। ज्ञान के दिव्य चक्षु किसी के पास नहीं है, नैनहीन ही है। अब वो ऋषि मुनियों ने मनुष्य को सुनाया कि ये सारे परमात्मा है, मनुष्य ने विश्वास कर लिया कि ऋषि मुनियों ने महसूस किया है ना, तो झूठ थोड़ी बोलते हैं, ये सब परमात्मा है। अब वो मनुष्य आज की जेनरेशन के लोगों को समझाना चाहते हैं ये सब परमात्मा है, और आज की जेनरेशन का व्यक्ति जिसका आईक्यू लेवल हाई है वो क्या कहता है, क्या कहता है? कैन यू प्रूव इट, यही कहेगा, या कहेगा हाउ कैन यू बिलीव दिस, ये सारे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये कैसे परमात्मा सब हो सकते। तो मनुष्य क्या कहता है, अरे ऋषि मुनियों ने कहा है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो आज का मनुष्य दिन प्रतिदिन नास्तिक बनता जा रहा है, क्योंकि वो कहता है आई कांट बिलीव दिस, आई डोंट बिलीव दिस। इसीलिए कहा कि समय की आवश्यकता है कि अब कम से कम हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को तो समझे। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो कहा क्या उसको मानना है, नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत मतें हैं, हम एक और मत ज्यादा देकर और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते। परंतु आज हम आपको एक कसौटी देंगे, जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो, समझो कि सत्य क्या है। और ये कसौटी है पांच बातें। ईश्वर किसको कहा जाता है? पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्व धर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, गॉड इज वन, सो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड। दूसरी बात, ईश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो। उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, नहीं तो वो उनसे श्रेष्ठ हो गया। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो परे, सर्वोपरे, यानी मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म का फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र। परमात्मा इन सभी चक्र से पर है। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री उसको कहते, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, और त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो। तो ये पांच बातें हैं कसौटी, जिस पर अपनी मत को कसकर देखना है सत्य है या नहीं। एक एक मत को उठाकर देखते हैं कि जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है। अब सत्य क्या है? प्रकृति को ही परमेश्वर कहना सत्य है या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, रचना है कहना सत्य है, तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, राइट? हाँ, अज्ञानता ही कहा जाएगा। आगे बढ़े, दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये प्रार्थना क्यों गाई, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है या हम उस मात पिता की संतान है? क्या कहेंगे? उस मात पिता की संतान है। अगर मात पिता की संतान है कहना ठीक है, तो इसका मतलब आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है। अगेन इट इज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो मान लिया सत्य तो नहीं है, राइट? कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है कि हमने पुरुषार्थ किया तो बन जाएंगे। इस संसार में मनुष्य कोई भी पोस्ट पोजीशन या डिग्री को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है। पिता जैसा बन सकता है, लेकिन खुद का पिता नहीं बन सकता है। ठीक इसी तरह आज मनुष्य अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से कोई भी स्टेज को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए दुनिया के अंदर मनुष्य ने जैसा कर्म किया वैसा टाइटल जरूर मिला। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। तो देवात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि जिस तरह से सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ा परमात्मा है जिसके टुकड़े टुकड़े होकर अंश होकर इस संसार में नीचे आए और अंत में जाकर के उसी में विलीन हो जाना है, परमात्मा बन जाना है, ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो मैटर है, मैटर मैटर में समा सकता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है। आत्मा के लिए यही कहा जाता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। अजर जर्जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, अविनाशी जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं हो सकता। सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, वो तो सागर बन गया, जबकि आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत शक्ति है, तो मिलेगी कैसे? या मिल सकती है? आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि आत्मा परमात्मा में मिल जाएंगी? क्या कहेंगे? अगर मिल गई तो अस्तित्व समाप्त। और तत्व तत्व में मिल सकता है, लेकिन आत्मा एक शक्ति है। शक्ति के लिए यही कहा जाता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो परमात्मा में मिलेगी कैसे? इसीलिए गीता में कहा, न तलवार उसको काट सकती है, न पानी उसको भिगो सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है, न तलवार उसको काट सकती है। तो कोई भी तत्व का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ सकता है। तो कैसे वो परमात्मा में मिल जाएंगी? कई बार कई लोग क्या सोचते, अरे जैसे पुत्र पिता का अंश है, वैसे आत्माएं भी परमात्मा का अंश है। पुत्र पिता का अंश है ये शरीर, जो मैटर का बना है उसका टुकड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा एक शक्ति, शक्ति के टुकड़े नहीं हो सकते। क्लियर हो गई बात? तो अब सत्य किसको कहे? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य? क्या कहे? संतान है कहना ठीक है, दूसरी बात आत्मा परमात्मा का अंश है कहना ठीक है, या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना ठीक है? ना? वंश है, अंश नहीं है, टुकड़े नहीं है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, अब ब्रह्म क्या है? पांच तत्वों की दुनिया से पार छठा तत्व, जिसको कहा ब्रह्म महातत्व, जहां सभी आत्माएं भी निवास करती है और पिता परमात्मा भी निवास करते, जैसे आसमान में सितारे होते हैं, इस तरह हर आत्मा भी अपने शाश्वत स्वरूप में वहां निवास करती है और पिता परमात्मा भी। इसीलिए अज्ञानता के कारण हम हमेशा दो दो बातें करते रहे, एक तरफ प्रकृति परमेश्वर है भी कहा, एक तरफ प्रकृति परमेश्वर की रचना है भी कहा, एक तरफ आत्मा सो परमात्मा कहा, फिर कहा आत्मा परमात्मा की संतान है। इसी तरह एक तरफ कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, तो दूसरी ओर कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। पार, पांच तत्वों की दुनिया से पार ब्रह्म में निवास करने वाला ईश्वर। अब सत्य किसको कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। तो ब्रह्म ही ईश्वर है कहना अज्ञान है। अगेन इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो मान लिया सत्य तो नहीं है। क्लियर हो गई? आगे बढ़े। चौथी बात, तब कई लोग कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है। अब सोचने की बात है कि सचमुच क्या कण कण में ईश्वर है? कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान हो सकता है? आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर कण कण में ईश्वर है? ऊंचे से ऊंची हस्ती, और कहां हमने उसको कह दिया? तब कई बार मनुष्य क्या कहता है कि नहीं, हर प्राणी में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अगर हर एक प्राणी में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है, तो एक व्यक्ति जब दूसरे का खून करता है तो ये कर्म किसका? आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो फिर परमात्मा अंदर बैठ के क्या कर रहे थे? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? हाँ, विचारों से भगवान साक्षी हो जाता है ऐसा? एक बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आज घर में माँ बाप बैठे हो और आपके बच्चे हो, बच्चे किसी बात को लेकर के लड़ना शुरू कर दे, मारपीट आरंभ कर दे, तो आप देखते रहेंगे कि उसके कर्म वो जाने साक्षी हो जाएंगे कि छुड़ाएंगे? परमात्मा जिसको कहा गया, परमात्मा जिसको कहा गया दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर, उस समय उसकी करुणा प्यार कहाँ गया? दूसरी बात के श्रीमद् भगवत गीता में अगर भगवान उवाच है, यदा यदा ही धर्मस्य, भावार के जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं इस संसार में आता हूँ। अगर वो इस संसार में आते हैं, ये भगवान का वायदा है, तो नहीं होगा तभी तो आएगा। अगर वो यही है तो कौन आएगा? अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? आज देखो, कोई व्यक्ति किसी को कोई बात पूछता है या बताता है और उसको मालूम नहीं होता है तो क्या कहता है? अरे ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते? कहते हैं ना, कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने, अनजानेपन में भी मुख से यही निकला ऊपर वाला जाने। फिर ये ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है? दोनों में क्या अंतर है? आज देखो, प्रकृति के अंदर भी ये गुण है कि अग्नि के अंदर लोहा रखो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा। संग का रंग, संग का रंग, कि लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा। अगर ईश्वर सब में व्यापक है, वो गुणों में अनंत है, तो उसके कोई गुणों का संग का रंग हमें न लगे ऐसा हो सकता है? अरे वो पारस है, और पारस अगर बाजू में बैठा है और व्यक्ति इतना बुरे कर्म करे, ये हो सकता है? ये विवेक स्वीकार करता है। लेकिन तब फिर बात आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी शास्त्रों में ही लिखी गई है। क्या शास्त्र गलत है? नहीं, शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया है उस भाव को हमने समझा ही ना हो, ये तो हो सकता है। शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र किस बेसिस पर लिखे? अनुभव के बेसिस पर लिखे। और कहा जाता है कि उस समय के ऋषि मुनि इतने सिद्ध थे कि कई बार वो साधना में समय के अंतराल से गुजर सकते थे, ये आने वाले कलिकाल को देख सकते थे कि कलयुग जब आएगा तो कितना मनुष्य घोर पाप कर्म करेगा। मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे? तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिखी कि मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है। एक भाव बिठाने का प्रयत्न किया। और आज से 200 साल पहले भी मनुष्य को अगर कोई प्रेरित करता था पाप करने के लिए तो क्या कहता था मनुष्य? मना कर देता था, बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, कहता था कि नहीं कहता था। लेकिन जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है ना, जो घुटना करना सीखता है, तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस समय माँ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर न निकल जाए घुटना करते हुए। तो माँ क्या करती है, उसके लिए बच्चे की सुरक्षा प्रथम है। तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाएगी, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी, देख बाहर गए ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया ताकि बच्चा सुरक्षित रहे, घर के अंदर रहे, अगर उसका ध्यान नहीं भी रहा तो। वो बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है, जैसे ही कुत्ते या गाय को देखता है बाहर, क्या करेगा, अंदर आ जाता है, खुश होता है, आई एम सेफ। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा, हंसेगा अपनी माँ पर कि मेरी माँ भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती है कि कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। और हंसते हुए बाहर निकल जाता है और कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आता है, कहेगा लो मैं ही लेके आया, वो क्या मुझे ले जाएगा। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह ऋषि मुनियों ने ये बात कही थी ताकि कली काल में मनुष्य पाप करने से बचे। लेकिन आज विज्ञान का युग आ गया, मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसीलिए जब उसको कोई कहता भी है, अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले से डर, तो क्या कहता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। पहले मना कर देता था, ऊपर वाला मुझे देख रहा है, मैं ये पाप नहीं करूंगा। और आज अगर कोई उसको कहता है भगवान तुझे देख रहा है, तो क्या कहता है, वो देखता क्यों है, वो तो छुड़ा सकता है ना, छुड़ाए ना। यानी उस सर्वव्यापकता की बात को भी स्वीकार नहीं करता, इसलिए तो आज इतना पाप कर रहा है मनुष्य। कई बार कई लोग हमसे बहुत बहस करते हैं, आप क्या कहना चाहते, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। हम उनको एक ही बात पूछते, आप मानते हैं, कहते हाँ हम मानते हैं, ईश्वर कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापी है। फिर हम उनको एक ही बात कहते हैं कि अगर आप मानते हैं कि ईश्वर आपको हर पल देख रहा है, आप में भी विराजमान है, तो इसका मतलब आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा। जिसको ये डर हो कि भगवान मुझे देख रहा है, उससे कोई पाप कर्म होगा, गलत कर्म होगा। जब ये बात कहते तो क्या कहते, अरे पाप तो होता ही है ना। जब आपको मानना नहीं है, पाप करते रहना है, तो वाई एडवोकेट, वाई एडवोकेट, ये अंधश्रद्धा की बात हम क्यों फैलाएं? सत्यता बताएं कि ईश्वर सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं कि आज अगर हम बाहर जा रहे हैं और कोई हमें कहता है बहन जी आप अकेले हैं, तो हम कहेंगे नहीं, भगवान हमारे साथ है। इस भावना को लेकर चलने की बात थी, ताकि हर प्रकार के बुरे काम से हम बचे रहे। तो इसीलिए कहा सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है और उसको हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन सिद्धांतिक नहीं कि ये माइक में परमात्मा है इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये कुर्सी में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये तो अंधश्रद्धा हो जाएगी। हमें अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देना है, भावनात्मक स्वरूप को लेकर जरूर चलना है। बीच के समय में मीराबाई जैसे कुछ भक्त हो गए इस संसार में, भारत में खास करके, जिनकी ईश्वर से इतनी प्रीत थी कि उस प्रीत के कारण उन्होंने भजनों में गाया, कह रहे जहां देखो तू ही तू है, तू कहां नहीं है, ये उनका भाव था। तो सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। क्लियर हो गई? शायद आप भी यही कहना चाहते थे आरंभ में कि भावनात्मक सत्य है और उस भावना को लेकर हर इंसान को चलना चाहिए, ताकि हर बुरे कर्म से, हर पाप कर्म से बचे रहे। लेकिन हर चीज की पूजा करना आरंभ कर दे तो मनुष्य का सारा दिन किस में जाएगा? इसीलिए कहा कि सिद्धांतिक नहीं, भावनात्मक सत्य है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। पांचवी बात, जब कहते हैं वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। अब नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? हवा जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन एक चित्रकार को अगर चित्र निकालना हो और उसको चक्रवात तूफान दिखाना हो तो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? जिस हवा का आकार नहीं है उसको भी वो एक आकृति दे देता है अपने चित्र में, कि चित्र को देखकर कहेंगे कि बड़ी तेज हवा चल रही है। इसी तरह अगर शांत प्रकृति दिखाना है कि हवा चल ही नहीं रही, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तो उसको भी दिखा सकता है कि पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा देता है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अगर चित्र के अंदर आकृति दे देता है तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? तो क्या स्वयं परमात्मा नाम रूप आकार बिना हो सकता है? तो उसका स्वरूप कौन सा है? तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ते तो ज्योत जलाई जाती, कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसके यादगार में ज्योत जलाई। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योति पुंज है। और वो भी ज्योति पुंज है तो उस ज्योति पुंज के साथ क्या वो पांचों बातें लगती है? हिंदू धर्म में जिसकी पूजा हमने ज्योतिर्लिंगम के रूप में की, ज्योतिर्लिंगम यानी जो ज्योति की आकृति, ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी जिस पर मनुष्य अपनी भावनाओं को अर्पित करते, और नाम दिया सदा शिव यानी जो सदा कल्याण करने वाले हैं। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होते। किसी का नाम होगा शांति भाई लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी। किसी का नाम होगा हसमुख भाई लेकिन कभी हंसते ही नहीं होंगे। लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है, शिव माना जो सदा कल्याण करने वाले, परम पवित्र, शिव माना शांति, शिव माना बिंदु, तो गुणवाचक नाम है। और इसीलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम जो आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं, और जितने भी मंदिरों के नाम है वो नाथ या ईश्वर में पूरे होते हैं, अमरनाथ, बबुलनाथ, सोमनाथ, भोलेनाथ, सारे शिव के मंदिर जो सर्व का नाथ और ईश्वर है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में चले जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होगी, तो साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, तो ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती, और वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती। भारत से बाहर जाओ नेपाल में तो पशुपति नाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। तो आज भी ये शिव के जितने भी मंदिर है उन सभी मंदिरों के नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक, और सारे भारत भर में उसकी पूजा होती है। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाओ श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता में चले जाओ काली पूजा मिलेगी, तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तो तमिलनाडु में जाओ मुरुगन की पूजा मिलेगी, तो राजस्थान में जाओ रामदेवरा जी की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में। तब कहा भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं है जहां महादेव जी का मंदिर न हो। इसलिए उसको कहा गया देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की। रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की, अगर श्री राम भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया? क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूँ रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहाँ से प्राप्त की थी? शिव भक्त था, इसीलिए तो भोलेनाथ कहा कि रावण ने याद किया तो उसको भी शक्ति मिल गई, श्री राम ने याद किया तो उसको भी शक्ति मिल गई। इसी तरह वृंदावन में जाओ गोपेश्वर मंदिर मिलेगा, जहां पर श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मिलकर के शिव की पूजा की थी। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया? क्योंकि अधर्म पर विजय प्राप्त कराना था। इसी तरह जिन देवियों की पूजा करते नव दुर्गे, ये नव दुर्गे है कौन? तो कहते असुर संहारनी शिव शक्तियां। असुरों का संहार करने के लिए शिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। तो इसीलिए जो देवों का भी देव देवियों का भी देव वो है महादेव। लेकिन यहाँ भारतवासी अज्ञानता के कारण एक गलती जरूर कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जहाँ दोनों का नाम भी अलग है शिव और शंकर, जहाँ दोनों की आइडेंटिटी ही अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम एक है आकारी देव पुरुष, जहाँ दोनों का कर्तव्य अलग है, एक है भोलेनाथ कल्याणकारी और दूसरे के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय हो जाता है। नाम अलग, आइडेंटिटी अलग, ऑक्यूपेशन अलग, फिर एक कैसे हो सकते हैं? जब भी कोई मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है, उसको ओम नमः शंकराय कहते हैं। अगर एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते? भारत में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि कहा। एक है तो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? क्यों नहीं कहते? शंकर को हमेशा गृहस्थ जीवन में दिखा है, माँ पार्वती है, दो बच्चे हैं, और ध्यान मुद्रा में दिखाया। किसका ध्यान कर रहे? उसको ध्यान करने की क्या जरूरत थी? किसका ध्यान कर रहे? कहते कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने ध्यान किया। किसका ध्यान किया? कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकृति का है। वहां बैठकर उन्होंने भी कैलाश का ध्यान किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। इसीलिए इतने सालों एकाग्रता से ध्यान किया तब वो शक्ति को प्राप्त किया, तब अपना कर्तव्य निभा सके। ये तो हुई हिंदू धर्म की बात। हिंदू धर्म से बाहर जाए इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन मक्का के अंदर काबा का पवित्र पत्थर है जिसको भारतवासी मक्केश्वर कहते हैं। और ये काबा के पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है। कहानी ये है कि पहले मक्का के अंदर 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी जिनको वो अल्लाह मानते थे, परंतु मोहम्मद पैगंबर साहब जब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है, ये सारे अल्लाह नहीं हो सकते। काफी मतभेद हुआ, उन्हें मदीना भेज दिया गया कि वहां जाके प्रचार करो, यहाँ नहीं। वहां जाके प्रचार किया, धीरे धीरे लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए। जब काफी मात्रा में लोग हो गए तो पुनः मक्का आए, अल्लाह एक है। काफी मतभेद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उस समय कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई और ऊपर से ये पवित्र पत्थर गिरा था जिसकी स्थापना मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुद की। और तब से लेकर के ये मान्यता हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी जीवन सफल हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकते, हज में जाने के नियम बहुत कड़े, लेकिन जो हज में जाता है वो क्या करता है वहां जाने के बाद, अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है, ये पवित्र पत्थर को चूमता है, 7 बार उसकी परिक्रमा करता है। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और किसी मस्जिद में नहीं होती है। और 7 बार परिक्रमा करने के बाद अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है, और वो लाइन है हे परवरदिगार नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो, तब कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर का मतलब नूर माना तेज प्रकाश, ज्योति माना तेज प्रकाश। हिंदुओं ने ज्योति कहा और ज्योतिर्लिंगम कह के पूजा, उन्होंने नूर कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, यहूदियों में कहा जाता मोसेस जब माउंटेन पर गया जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ था जिसको देखकर मोसेस ने कहा ये हो वाह, यानी द सुप्रीम लाइट। इसलिए जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। और इसीलिए उनकी अंतिम प्रार्थना में क्रॉस पर चढ़ने से पहले उसने भगवान से यही कहा कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर वेटिकन चले जाओ जो क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, जहां पोप की गद्दी है, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप निराकार लाइट का ही सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? क्या कहेंगे, एक ही तो है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े सुंदर शब्द में उसकी महिमा गाई है, एक ओंकार निराकार निरवैर सतनाम अकाल मूरत अजोनी, कितनी सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। इसीलिए दिखाते कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी, जिसको वो वाहे गुरु कहते हैं, वो निराकार की महिमा गाई थी। और आगे जाए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? महावीर स्वामी को भी ध्यान मुद्रा में दिखाए, किसका ध्यान कर रहे हैं? तो कहते सिद्ध शिला का ध्यान किया। सिद्ध शिला माना जो सर्वश्रेष्ठ निराकार है उसका ही ध्यान किया। आज भी जैनी लोग दिवाली के दिन जब महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया वो गति हमें भी प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है, किस गति की बात कर रहे हैं? और उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के लिए तीन बातें बताते हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र। चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, ज्ञान के दिव्य चक्षु खुलने चाहिए और दर्शन शास्त्र में जो बातें हैं उसको आचरण में लाने की आवश्यकता है, तब उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे जाए महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन वो खुद भी ध्यान मुद्रा अवस्था में है, किसका ध्यान कर रहे हैं? आज भी जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, जिसको कहते हैं चिंकुनसेकी। चिंकुनसेकी का मतलब है जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता, इसीलिए उसके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं। शांति का दाता, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, यही कहते हैं। आजकल के साइंटिस्ट इस आकृति के ऊपर काफी रिसर्च कर रहे हैं, शिवलिंग की जो आकृति है उसके ऊपर काफी रिसर्च कर रहे हैं। और उनके रिसर्च से ये पता चला है कि यही आकृति शिवलिंग के लिए या चिंकुनसेकी के लिए क्यों रखी गई, तो कहा सबसे ऊर्जावान आकृति अगर है तो यही है, सबसे ऊर्जावान। इसीलिए आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में शिवलिंग के ऊपर एक कलशी रखते हैं जहां से बूंद बूंद पानी टपकता है। क्यों रखी है? क्योंकि अगर सबसे ऊर्जावान आकृति यही है तो उसको शीतल रखना आवश्यक है, इसीलिए उसको शीतल रखने के लिए वो बूंद बूंद टपकता है। शिव का मंदिर जब भी बनता है ना, तो मूर्ति को कहां से लाते हैं, शिवलिंग को कहां से लाते हैं, पता है? दरवाजे से नहीं लाया जाता है, द्वार से नहीं लाते हैं, ऊपर का गुंबज नहीं लगाया जाता, ऊपर से उतारा जाता है। भक्ति में भी इतनी सुंदर यादगार है कि एक परमात्मा ही है जो अवतरित होते हैं, किसी माँ के गर्भ से इस संसार में नहीं आते, इसीलिए यादगार भी इतना सुंदर है कि अवतरित होते हैं। इसी तरह और आगे जाए पारसी धर्म में अग्यारी होती है। कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे और उनके अग्यारी को कहा जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो पहली कसौटी सर्वधर्म मान्य कौन है, कौन है जिसको हर धर्म वालों ने स्वीकार किया, नाम भले अलग अलग दिए लेकिन वो आकृति वो स्वरूप कौन सा है, जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, गुरु नानक देव ने निराकार वाहे गुरु कहा, सिद्ध शिला कहा, चिंकुनसेकी कहा। हर धर्म में सत्य एक ही है, गॉड इज वन। जो देवों का देव, किसी ने गौर कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर का, प्रभु का, मालिक कहा, साईं बाबा ने क्या कहा, सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक। लेकिन आज उस परमेश्वर को भूल करके हम कहां ढूंढ रहे हैं? अज्ञानता के कारण। तो जो देवों का भी देव महादेव वो एक ही है, जिसकी पूजा सभी देवताओं ने भी की। दूसरी कसौटी, सर्वोच्च शक्ति जिसके तरफ सभी ने अपनी अंगुली का इशारा दिया, ऊंचे से ऊंची शक्ति। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभू। शंभू का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ, उसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है, स्वयंभू है जो स्वयं प्रकट हुआ है। तीसरी कसौटी, जो सभी चक्रों से पर है, अजन्मा, अकाल मूरत, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, अव्यक्त स्वरूप, जिसको कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, अव्यक्त, अकर्ता भोक्ता, न कर्म करता है न फल भोक्ता है, न पाप है न पुण्य है, और दुख हरता सुख करता, इसलिए उसको हरि कहा। जो दुख हर के सुख प्रदान करने वाले, ये चक्रों में परमात्मा नहीं आते, परमात्मा इन सभी चक्रों से ऊपर है। इसलिए आज के बाद ये कसौटी की बातें जरूर हम याद रखें कि ईश्वर की वास्तविकता क्या है, तभी हम कई प्रकार के भ्रम से अपने आप को बचा सकेंगे। नहीं तो आज दुनिया में इतने सारे भगवान हो गए कि सत्य को पहचानना बहुत मुश्किल, और अगर सत्य का परिचय नहीं है तो भ्रम में फंस जाते हैं व्यक्ति। इसीलिए कहा जो सभी चक्रों से ऊपर है वो इन चक्रों में नहीं आते, जो इन चक्रों में आया वो भगवान हो ही नहीं सकता, जो सभी चक्रों से ऊपर है। और चौथी बात, पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, और तीनों कालों का ज्ञान होने कारण, सत्य ज्ञान होने कारण उसको सत्यम कहा। उस तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले त्रिनेत्री दिव्य चक्षु विधाता, उसी को कहा गया है, जिससे मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए उसको शिवम कहा। और उसकी हर रचना अति सुंदर है, इसलिए तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ाते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा। तो सत्यम शिवम सुंदरम, जिन्होंने ये तीन मूर्तियों की रचना की अपना कार्य संसार का कराने के लिए, ब्रह्मा द्वारा सृजन का कार्य, विष्णु द्वारा पालना का कार्य, और शंकर द्वारा महाविनाश महापरिवर्तन का कार्य। इसलिए ये तीन मूर्तियों का भी गायन हर धर्म में मिलेगा, जिसको हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, उसको इस्लाम धर्म में कहा जिब्राइल मिकाइल इसराफेल। जिब्राइल सबक देने वाला, मिकाइल रोजी रोटी देने वाला, पालना देने करने वाला, और इसराफेल कयामत लाने वाला। उसी को ही क्रिश्चियन धर्म में द थ्री होली एंजल कहा गया, जीओडी गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, और परमात्मा को कहते गॉड फादर, द फादर ऑफ जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। उसी को ही गुरु नानक देव ने कहा, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। तीन मूर्तियों का गायन हर धर्मों में मिलेगा। और पांचवी कसौटी, सर्व गुणों में अनंत है, सर्व शक्तिमान है। इसलिए ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है, बिंदु माना इन्फिनिट, इन्फिनिट जिसका मेजरमेंट ही नहीं हो सकता, इसलिए उसको कहा इन्फिनिट। बिंदु के बिना एक लकीर भी नहीं खींच सकते, बिंदु के बिना एक अक्षर भी नहीं लिखा जाता है। इसलिए परमात्मा की व्याख्या भी अगर हम करें तो बिंदु में सिंधु है, गुणों में अनंत है, शक्तियों में अनंत है, लेकिन रूप में बिंदु है। विज्ञान के अंदर सबसे सूक्ष्म अणु को माना जाता है। और नौवे अध्याय गीता में कहा, मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूं, मुझे अपना शरीर नहीं है, अशरीरी। तो पांचों कसौटी एक के साथ लगती है, तो ये है परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछते हैं, आपका नाम क्या है। तो परमात्मा का दिव्य नाम आज हमने देखा, सदाशिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, हरि, वाहे गुरु, सिद्धशिला, चिंकुन सेकी, जो भी कहो। उसका स्वरूप आइडेंटिटी हर धर्म में अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति प्रकाश नूर लाइट अखंड ज्योति निराकार स्वरूप देवों का देव। उसकी क्वालिफिकेशन पांच बातें पांच कसौटी, सर्व धर्म मान्य सर्वोच्च सर्वपरि सर्वज्ञ सर्व गुणों में अनंत। और उसका एड्रेस पार ब्रह्म परमेश्वर, जो पांच तत्वों की दुनिया से पार ब्रह्म महतत्व में निवास करने वाले ईश्वर, जिसको किसी ने मोक्ष धाम कहा, सचखंड कहा, रूहानी दुनिया कहा, सातवां आसमान कहा, हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड कहा, और गीता में कहा परम धाम, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी पहुंच नहीं सकती, वो धाम मेरा धाम है। स्पष्ट किया कि मैं कहां रहता हूं, सर्वव्यापी हूं ये तो कहा ही नहीं। मेरा धाम परम धाम है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी पहुंच नहीं सकती, जो स्वयं प्रकाशित है, वो दिव्य धाम मेरा धाम है, यही भगवान वाच है। और उसका ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब ये धर्म की अति ग्लानी होती है, अधर्म चारों ओर फैल जाता है, तो अधर्म का नाश कराना खुद करता नहीं है। इसलिए अधर्म का नाश कराना शंकर द्वारा, ब्रह्मा द्वारा नई सृजन करना, इसलिए कहा जाता कि परमात्मा को जब नई सृष्टि सर्जने का संकल्प आता है तो उस बीज को ब्रह्मा के अंदर रोपित करता है, जो ब्रह्मा संकल्प से सृष्टि का सृजन करता है, उस बीज को फलीभूत करता है, और फिर विष्णु उसकी पालना करता है। तो करण करावन हार कौन, परमेश्वर। कराने वाले किससे कराते हैं, ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा महाविनाश। इसलिए कहा कि तीन मूर्तियों का गायन भी हर धर्म में मिलेगा, क्योंकि हर धर्म में ये बात कही हुई है। तो ये है परमात्मा का संपूर्ण परिचय। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं कि है, अभी भी इसीलिए परमात्मा का सत्य स्वरूप जब जान लेते हैं तो कई प्रकार से जो शिकायत है कि हमारा मन नहीं लगता ईश्वर में, क्यों नहीं लगता? क्योंकि किस में लगाना यही पता नहीं, किस में लगाएं? अब क्लियर हो गया तो अब लगाना सहज है। चलिए थोड़ी देर ईश्वर में अपने मन को एकाग्र करते हैं, उस योग अभ्यास करते हैं और मन को जब लगाते हैं तो उस परमात्मा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जैसे ही अपने मन के तार को जोड़ते ईश्वर के साथ तो उस परमेश्वर से ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। जिस तरह बाहर खड़े हो जाओ धूप में तो सूर्य से मांगने की जरूरत नहीं कि हे सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, खड़े रहो मिलेगी, रोम रोम में ऊर्जा भर जाएगी, तो परमेश्वर से भी मांगने की जरूरत नहीं। मन का तार जब उससे जुड़ता है, वो योग जब होता है तो सहज ही परमात्मा से भी ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगती है। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठते हैं।
आधार है शिव ज्योति।